सतगुरु।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
सुनाई दे रहा पीछे से आवाज? हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर हवन चारी, यमुना तीर हवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
सभी लोग गाइए, सारे लोग जिनको सुनाई दे रहा है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे।
बोलिए दिल से गाइए, हार्ट से, जोर से,
हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Thank you.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Lakshmana Hanuman ki jai Prabhupad 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 Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vaigur Premanande Shri Shri Radha Parthasarthi Bhagavan Ki Shri Shri Gaurataya Ki Shri Shri Panchatattva Ki Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Vaigur Premanande Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavad Gita Adhyay 7 Shlok Sankhya 19 Yahan likha hua hai Agar aap logo ke paas Bhagavad Gita hai to woh अध्याय खोल सकते हैं श्लोक संख्या और पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 भगवद गीता में देखेंगे सब लोग देखिए इधर यहां ऊपर में लिखा हुआ है अध्याय इधर श्लोक लिखा हुआ है ऐसे ढूंढें पेज नंबर है 258 या 59 बोल सकते हैं 58 59 58 ना मिल गया सबको आप लोग मिलके पढ़ सकते हैं और ये बोर्ड में लिखा है जिनको दिख रहा है खासकर पास वालों को दिख ही रहा है जिनको नहीं दिख रहा है वो पीछे भगवद गीता हेल्प ले सकते हैं उसे ठीक है तो श्लोक पीछे पीछे दोहराइए बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः।
बहुनाम ज्ञानवानां प्रपद्यते
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति
समहात्मा
सुदुर्लभम्।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते
बहुनाम जन्मनाम अन्ते
ज्ञानवानां प्रपद्यते
ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः। माता जी बहुनाम जन्मनाम अन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। शब्दार्थ सुनिए। बहुनाम अनेक जन्मनाम जन्म तथा मृत्यु के चक्र के अन्ते अंत में ज्ञानवान ज्ञानी माम मेरी प्रपद्यते शरण ग्रहण करता है वासुदेवः भगवान कृष्ण सर्वम सब कुछ इति इस प्रकार सह ऐसा महात्मा महात्मा सुदुर्लभः अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऑफ चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। आप पीछे दोहराइए। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब श्रवण कीजिए। तात्पर्य इस प्रकार है। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का सर्वचरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर इसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में ही व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी व्याख्या मिलती है। और छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि ना वे वाचो न चक्षुषी न श्रुत्राणी न मानसी चक्षते प्राण इति वाक्षते प्राणो हेवतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन है, ये प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने और सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। इसके तुलनार्थ में भगवद्गीता 7.17-11.40 में भी इसके बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद की
जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की
हरे कृष्ण। तो सब लोग कृपया अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रख लीजिए ताकि बीच में व्यवधान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, सब लोग ध्यान से श्रवण कर सकें अगले एक घंटे तक, ठीक है। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भक्ति योग का प्रारंभ हो गया है। भगवद गीता को अगर ध्यान से देखें तो 18 अध्याय है, तो 6, 6 और 6 तीन विभागों में बटा हुआ है। पहले के 6 जो है कर्म योग के बारे में बताया गया है और अंतिम के जो 6 है वो ज्ञान योग के बारे में बताया गया है, और बीच के जो है 7 से 12 तक ये जो है भक्ति योग के बारे में बताया है। तो 7वां अध्याय क्या है, भक्ति योग के बारे में वर्णन करता है। और 7वें अध्याय में भगवान, इस अध्याय का नाम जो है भगवत ज्ञान है, यानी भक्ति का ज्ञान उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस अध्याय में ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जो मुझे सब कुछ मान लेता है, वासुदेवम वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। कौन बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, बात अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसे अगर पीछे जाएं 7वें अध्याय, इसी अध्याय में 15वां श्लोक में बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो हैं मेरे पास नहीं आते हैं, और 16वें श्लोक में बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। तो 4 लोगों में कौन है? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ का मतलब दुखी, हम सब दुखी होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान हमारा बैंक बैलेंस खराब हो रहा है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, है ना, मेरी शादी नहीं हो रही है, ये बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं, इसको बोलते हैं दुखी। या कुछ भयंकर बीमारी ठीक नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं आर्थ, दुखी। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब होता है धन, धन के लिए जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, है ना, सिर्फ पैसे के लिए। कई लोग भगवान के पास जाते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे ओम जय जगदीश हरे, तो कई लोग इसके लिए जाते हैं धन के लिए, तो ऐसे भी लोग हैं। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु, इस संसार में क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, लोग मरते हैं तो कहां जाते हैं, इसके पहले मैं कहां था, जब जीवन मुझे प्राप्त हुआ माता गर्भ में आया उसके पहले मैं कहां था, ऐसा प्रश्न जो जिज्ञासा करता है, जिज्ञासु ढूंढता है, अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाता है जिज्ञासा करता हुआ, वो भगवान के पास आता है। और अंतिम में जो ज्ञानी है, ज्ञानी ये जानता है कि भगवान वासुदेव सब कुछ हैं, वो भगवान के पास आता है। तो चारों प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। भगवान बोलते हैं जन सुकृतो अर्जुना, हे अर्जुन ये जन जो है, जना मतलब ये लोग हैं, ये क्या है, सुकृतिनो यानी कि पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं। क्यों? देखिए मोबाइल के साथ बच्चों को भी साइलेंट मोड में रखिए, क्योंकि अगर आप सुनना चाहते हैं तो बच्चों को ध्यान रखना आना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे बच्चों, माताओं के पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे ध्यान रखें, शांत रखें, ये उनका कर्तव्य है, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं ये पुण्य आत्मा है। क्यों पुण्य आत्मा है? ये तो पैसा मांग रही है सिर्फ भगवान से, नहीं कम से कम किसी व्यक्ति के पास नहीं गए, कम से कम किसी भूत के पास नहीं गए, किसी प्रेत के पास नहीं गए, किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, किसी देवी देवता के पास नहीं गए, किसके पास आए हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं पुण्य आत्मा है। जरूर किसी न किसी प्रकार का कोई पुण्य पिछले जन्म में किया होगा, इसलिए जब भी इनको कुछ कष्ट आता है तो सिर्फ भगवान के पास आते हैं। तो अच्छी बात है। आप सोच के देखिए कि आपके घर का कोई बच्चा है, अगर उसे कुछ आवश्यकता है, भूख लगी है, और जैसी भूख लगती है वो घर से गेट खोलता है, पड़ोस में जाता है, पड़ोसी से बोलता है कि मुझे खाना दो, माता पिता को कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा कि हमारा बच्चा सब कुछ मेरे पास है, फिर मांगने किसके पास जाता है? पड़ोसी के पास। या टाटा बिरला अंबानी का कोई बेटा हो, टाटा बिरला अंबानी की कंपनी में जाए और उसके मैनेजर से मांगे कि मुझे कुछ खाने के दे दो, या मुझे दर्द है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो टाटा बिरला अंबानी को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, ये क्या है, मतलब मैं तुम्हारे पास मैं मालिक हूं, मेरे मैनेजर से बात करो, कमाल की बात है। तो ऐसे भगवान बोलते हैं, इसलिए वो लोग पुण्य आत्मा नहीं होते हैं, उनको मूर्ख माना गया है। इसलिए जो भगवान के पास आता है वो क्या है, पुण्य आत्मा है। और भगवान आगे के श्लोक में बोलते हैं, 16 श्लोक में बोलते हैं, 17वें श्लोक में बोलते हैं कि उनमें से जो चारों में से जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। देखिए अब भगवद गीता के पास है, उसमें देखिए 17 में क्या बोलते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे भी प्रिय है। और क्या बोलते हैं, 18वें बोलते हैं, निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, जो चारों के चारों बाकी तीन भी, लेकिन जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे मैं अपने ही समान मानता हूं, वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य की निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान जीवन का लक्ष्य है ये वो जान जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या है, महात्मा है। हम महाप्रभुपाद जी की जगह लिखते हैं एक आर्टिकल में, बैक टू गॉड एंड मैगजीन में, भगवत दर्शन में, कि महात्मा शब्द को बताया गया, यहां पर उसका तुलना की गई, वास्तव रूप में महात्मा कौन है, महान आत्मा है ना। किसी को भी महात्मा बोलना आसान ठीक नहीं है, महान आत्मा कौन है प्रभुपाद? भगवान यहां क्या बोल रहे हैं, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा वास्तविक और दुर्लभ है। वो नहीं कि जिसका नाम बस टाइटल लगा दिया जाए महात्मा, वही महात्मा नहीं है। महात्मा उसके कार्य से होना चाहिए। महान आत्मा मतलब आत्मा का संबंध किससे है, परमात्मा से, भगवान से, तो उससे संबंधित महान कार्य करेगा तभी तो महान आत्मा है। अगर वो शरीर से संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो शरीर से संबंधित है तो क्या बोलेंगे, महान शरीर बोल दो उसको, महान देह बोल दो, महान आत्मा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आत्मा संबंधित कार्य नहीं कर रहा है। जैसे देश को बचाना है या किसी समाज का सेवा करना, कंबल बांटना है, अनाथालय खोलना है, ये कार्य कैसा है, ये शरीर से संबंधित है। आज किसी को कंबल दे दोगे, कल को कंबल के लिए एक आसरा देखेगा, भोजन के लिए आसरा देखेगा, उसको लाचार बना देते हैं हम। इस मधुसूदन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक बार वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक भिखारी उनको आके बोलता है कंबल चाहिए, तो बोले कि नहीं नहीं हम कंबल नहीं लेते, बोलते नया वाला है, बोलते नया वाला है, बोलते लेकिन हम लोग तो, उन्होंने टालने के लिए कहा कि हम तो बहुत सारे लोग हैं, 20-25 लोग हैं, बोलते मेरे पास उससे भी ज़्यादा है। पीछे ले गया और उसने जहाँ अपने जहाँ लोग सोते होते हैं वहाँ खोल के दिखाया, कम से कम 50 कंबल नए, और हम क्या सोचते हैं कि हमको उन्होंने डोनेट किया है, कितना पुण्य का काम किया है, वो सब कुछ इकट्ठा करता है और बेचता है, और हम उसको लाचार बना देते हैं, मजबूर बन जाते हैं, ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये पुण्य काम नहीं है, आत्मा के स्तर पर है ही नहीं, ये शरीर के स्तर पर है। किसी शराबी को अगर आप 10 रुपए देते हो तो 100% उसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि जब शराब पिएगा तो आप पाप आपको ही भोगना पड़ेगा, आप माध्यम बन चुके हैं उसको शराब दोबारा पिलाने के लिए, अन्यथा शायद शराब नहीं पीता हूं। तो दया वास्तव में महान कार्य जो है वो आत्मा के स्तर पर होता है, ठीक है। तो जो भक्त होता है वो समझ जाता है भगवान सब कुछ है ना, भगवान पर आधारित रहता है। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे क्या करता है, मनुष्य जीवन भौतिकता का त्याग करता है। भौतिक वस्तुओं को त्यागना ये आध्यात्मिक स्तर दिखाता है, कौन कितना ज्यादा विरक्त है वो उतना ज्यादा आध्यात्मिक हो सकता है ना। जैसे बाइबल में बताया गया है, सुई के छेद से हाथी को निकालना जितना कठिन है उतना कठिन है संसार में धन इकट्ठा या धनी व्यक्ति भक्ति करना, उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल है, कठिन है, कर सकता है जब उसके अंदर विशेष कृपा होगी भगवान की, तब वो कर सकता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीता है तो उसके लिए कठिन हो जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति साधारण जीवन जीता है तो आसान हो जाता है। तो ये बातें यहां लिखी गई कि प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तो भगवान का निर्विशेषवाद की झुकाव हो जाता है, निर्विशेष झुकाव होने के बाद आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि भगवान चाहिए मुझे, किसी की सेवा करूं, सेवा करना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से वो भक्ति में उन्नति करता है। तो इस बात से संबंधित के बारे में बताया गया है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोल रहे हैं, कि इनको समझ में आ चुका है कि भगवान के अलावा किसी की मुझे सेवा नहीं करनी, ये अल्टीमेट सेवा है भगवान की, है ना। जैसे कि बातें मत कीजिए कृपया, तो पूछा जाए प्रश्न कि संसार में कोई ना कोई किसी की सेवा कर रहा है ना, सब लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई देश की सेवा कर रहा है देशभक्ति, है ना, कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई समाज की समाज सेवा कर रहा है ना, कोई पशुओं की सेवा कर रहा है, ऐसे भी लोग हैं पशुओं की सेवा कर रहे हैं, कोई अपनी ही सेवा में लगा हुआ है, अपनी चिंता में लगा रहता है मेरे पास धन कैसे आ जाए, परिवार वाले जाए कुछ कहीं भी मुझे कोई मतलब नहीं, बैंक का बैलेंस बढ़ता रहे, किसी को भी ठगता रहूं लूटता रहूं उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ नहीं करता है, जब कुछ करने के लिए सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी पशु को पाल लेता है, कुत्ता पाल लेता है, कुत्ता की सेवा करता है, कुत्ते को नहलाता धुलाता है, शैम्पू लगाता है, उसका इंजेक्शन लगवाता है, घुमाता है, अब सोचता मालिक मैं हूं। अब सोचो कुत्ते को कोई लेके जा रहा हो, कुत्ता आगे चलता है ठीक है और खींच के ले आता मालिक को, और मालिक क्या सोचता है मैं मालिक हूं, जो आगे चल रहा है जो खींच रहा है वो मालिक है ना, तो कुत्ता मालिक बन जाता है। अब वो हमेशा क्या सोच रहा है, जो पालने वाला जो है कुत्ता पालने वाला क्या सोचता है कि मैं मालिक हूं। मालिक का मतलब क्या होता है, जो सेवा लेता है, नौकर मतलब जो सेवा करता है, कुत्ता सेवा करता है कि मालिक करता है, मालिक करता है, उसको नहलाता है, उसको डाइनिंग टेबल में खिलाता है, अपने साथ सुलाता है, उसकी हेयर कट भी करता है, उसके लिए कितनी सेवा करता है ना, कुत्ता कुछ नहीं करता है, कुत्ता बस बैठा रहता है। तो सेवा तो कर ही रहे हैं हम लोग, संसार की, देश की, परिवार की, समाज की, कुत्ते की, अपनी, अपने इंद्रियों की, अपने मन की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब सुखी नहीं है। अब एक देशभक्त से पूछ लो क्या सुखी है, महात्मा गांधी से बड़ा देशभक्त मिलेगा राष्ट्र में, राष्ट्रपिता बोलते हैं, उनको गोली मारी थी, किसने गोली मारी थी, देशभक्त था वो, क्यों गोली मार दी, एक देशभक्त दूसरे देशभक्त तो क्यों गोली मारेगा, इसका मतलब वहां भी तनाव था, वहां भी संतुष्टि नहीं थी, वो दुखी थे, बहुत दुखी थे, बोलते इससे अच्छे था कि गुलाम था हमारा देश, बहुत दुखी थे जब शरीर त्याग रहे थे, तो उनका उद्देश्य क्या था, आजादी दिलाना, फिर दुखी क्यों हो गए सारे लोग, है ना, देश की सेवा करके भी दुखी थे, ऐसे हम परिवार की सेवा कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, है ना, कुत्ते की सेवा करके कुछ सुखी हो पाया नहीं, वो भी दुखी है, क्योंकि हम गलत व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, आत्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास। कृष्ण की सेवा करना उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे नदी है, नदी का स्वाभाविक गुण क्या है? समुद्र की ओर जाना स्वाभाविक है ना। जब उसको रोक दे तो उसका बोलता है बांध। बांध का मतलब बांध दिया है, जाने नहीं दे, रोक दिया उसको, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्या होता है? आगे की नदी सूख जाती है, उसमें जल नहीं होता है, उपयोग भी नहीं ला सकते। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग क्या हो चुके हैं? सूख चुके हैं, क्योंकि हम बंद गए हैं। जहां जाना है हमें वहां जा नहीं रहे, नेचुरल फ्लो जहां होना है, जहां बहना है हम लोग वहां बह नहीं रहे, हम लोग कहीं और बहना चाहते हैं, इसलिए सूख गए, इसलिए दुखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस जो जीवात्मा का जो स्वभाव है, आत्मा की सेवा करना, वो करना पड़ेगा, तब सुखी होंगे। और जैसे ही वो सेवा करना प्रारंभ करते हैं उसको आनंद आता है। आप बताइए, आप कितने लोगों को कीर्तन में आनंद आता है? जब कीर्तन यहां होता है कितने लोग अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। क्यों? वही कीर्तन तो कई साल से कर रहे हैं। अब एक कोई मूवी का सॉन्ग उठाइए, रोज गाइए, 100 बार गाने के बाद आप बोर हो जाएंगे। कोई सीरियल देखिए, दिख दिख के बोर हो जाएंगे, है ना। एक दूसरे का चेहरा देख के बोर हो जाते हैं हम लोग, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन कितने सालों से कर रहे हैं, कोई बोर नहीं होता। क्यों? ये कि दिव्य है, भगवान से संबंधित है, अपने परम भगवान जिससे संबंध है उसका नाम लेने में आनंद ही आता है, दुखी नहीं होते। तो ये बात कौन समझ जाता है? ज्ञानी। इसलिए बताया गया कि वो सर्वोत्तम है, ठीक है। तो यहां पर एक श्लोक है जो 18वां श्लोक, उसमें भी एक बात बोला गया, साधव हृदयम मयम साधु नाम हृदयम त्वम। यहां पर ये जो श्लोक बोला गया श्रीमद् भागवत में बताया गया, भगवान कहते हैं कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं और मेरे हृदय में कौन रहते हैं? साधु रहते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, यानी भगवान तत्पर रहते हैं ऐसे भक्त की सेवा करने के लिए जो उनकी सेवा में तत्पर रहता है। कॉम्पिटिशन है, प्रतियोगिता बनी हुई है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, तुम मेरी सेवा कर रहे हो, कौन कितना ज्यादा करता है देखते हैं, कॉम्पिटिशन है भगवान और भक्त में। तो भगवान लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और एक बार की ऐसी घटना है, जैसे भक्त जो होता है वो गुरु और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है, हमेशा सोचता है कि कैसे भी गुरु और कृष्ण को संतुष्ट कर सके। तो ऐसी घटना आती है, रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। रामानुजाचार्य जो है एक महान आचार्य है श्री संप्रदाय के, जैसे ये हमारा संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय है, वैसे श्रीरंगपट्टनम जो है, आप जाएंगे साउथ इंडिया में रंगनाथ जी का मंदिर है, तो रामानुजाचार्य उसी संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय कहा जाता है। 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि 4 संप्रदाय जो है ये प्रमाणिक है, उसमें से जो इस्कॉन जो है वो बिलोंग करता है ब्रह्म संप्रदाय से, बाकी 3 संप्रदाय भी प्रमाणिक है, उनसे भी ज्ञान लेंगे, उनसे भी संग करेंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश, बहुत ही महान शिष्य थे, भगवान की बहुत सेवा करते थे। वहाँ एक भगवान है, उनका नाम है वरदराज, वरदान प्रदान करने वाले वरदराज, विग्रह है विष्णु जी का, उनको वरदराज कहा जाता है। तो एक बार उस प्रांत का राजा था वो शिव जी की उपासना ज़्यादा करता था, लेकिन वो विष्णु के जो भक्त थे उनको बिल्कुल नहीं मानता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि जितने भी विष्णु के भक्तों को मैं बुलाऊंगा, अपने ब्राह्मणों से चर्चा कराऊंगा और उनको हरा कर उनको फांसी में लटका दूंगा। पर वास्तव में कोई शिव जी का भक्त हो या किसी देवी देवता को या भगवान का भक्त हो तो इस प्रकार के विचार नहीं रखता है ना। क्योंकि जो भक्ति भक्ति करता है वो तो मृदु होता है, सरल होता है, विनम्र होता है, क्रूर नहीं होता है। लेकिन वो ऐसी क्रिया उन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य को बुलाया कि आप आओ मेरे पास और मेरे ब्राह्मणों से आप चर्चा कीजिए, आप चर्चा में जीत जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हार जाओगे तो मैं फांसी पर लटका दूंगा। तो रामानुजाचार्य जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि बाहर सैनिक खड़े थे ले जाने के लिए। तो कुरेश बाहर खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि मेरे गुरुदेव को ले जाने वाले हैं, तो कुरेश ने कहा कि गुरुदेव आप मत जाइए, मैं आपके कपड़े पहन के जाता हूँ, क्योंकि आपको तो उन्होंने देखा ही नहीं है, जब मैं जाऊँगा तो लोग यही समझेंगे कि मैं ही रामानुजाचार्य हूँ। तो रामानुजाचार्य बनकर कुरेश अपने ही एक रामानुजाचार्य के जो गुरु थे उनके साथ, यानी शिष्य और गुरु दोनों, किसके? रामानुजाचार्य के शिष्य, रामानुजाचार्य के गुरु दोनों निकल पड़े और उस राजा के पास गए। राजा के पास जैसे पहुंचे, राजा ने ब्राह्मणों से चर्चा करना प्रारंभ किया। ब्राह्मण ने बहुत से प्रश्न किए और कुरेश बहुत ही विद्वान थे, क्योंकि रामानुजाचार्य के शिष्य हैं इसलिए बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही अच्छे उत्तर दे रहे थे, और उनको हरा दिया। ब्राह्मण हार गए। जब ब्राह्मण हार गए तो उनको क्रोध आ गया। राजा फिर भी क्रोधी था, उन्होंने क्या किया, भला इन्होंने छल से हमें हराया है इसलिए उसको दंड किया जाए कि आंखें निकाल ली जाए और इनको कोड़ों से मारा जाए, 100 कोड़े मारे जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो कुरेश ने विरोध नहीं किया, उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा है कि मेरे गुरुदेव यहाँ होते तो उनकी आंखें निकाल ली जाती, अब मेरी आंखें निकाली जाएंगी तो कम से मेरे गुरुदेव तो बचेंगे। ये सेवा की भावना देखकर आगे वो बढ़ चले, उनकी आंखों को निकाल लिया गया। कुरेश की आंखें निकाल गई और रामानुजाचार्य के गुरु की भी आंखें निकाल ली गई। क्या हुआ, उनको घोड़े मारकर जंगल में छोड़ दिया। तो उनके गुरुदेव वृद्ध थे, वो तो शरीर त्याग दिए, वहीं पर उनकी समाधि बना दी कुरेश ने। और कुरेश अंधे, अपनी आंखों को अंधा होकर वो आगे बढ़ चले और रामानुजाचार्य के पास पहुंचे। रामानुजाचार्य देखकर रोने लगे कि मेरी वजह से मेरे शिष्य का ये हाल हो गया है। तो बोले कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोले तुम काम करो कि वरद राज जी इनसे रहे वरदान मांगो कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाए। बोलते नहीं, मुझे अपने गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिला, मैं अपनी आंखें नहीं मांगूंगा। बोलते नहीं, मेरा आदेश है, जाओ मांगो अपनी आंखें। तो वरद राज जी के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, हे वरद राज जी, मुझे ऐसी आंखें दीजिए मुझे आपका दर्शन हो और मेरे गुरु का दर्शन हो और किसी का दर्शन न हो संसार में। तो ये भक्त का डिमांड रहता है, है ना। भक्त ये नहीं मांगते कि मुझे संसार में भगवान जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रकट हो जाए कि क्या चाहिए, एक मिनट भगवान अपना लिस्ट निकाल ली, ये सारे लिस्ट दे दो, बहुत दिनों से कोई दे नहीं रहा है। नहीं, भक्त कुछ बोलता भगवान मुझे चाहिए नहीं। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या इतना दिन किए, भगवान जब प्रकट उनके समक्ष बोले मांगो तुम्हारी क्या इच्छा है, बोले भगवान मैं तो लेने के लिए बहुत कुछ आया था जो कि कांच के टुकड़े के समान है, पर आपका दर्शन पा के मुझे लग रहा है मुझे हीरा मिल गया है, अब मुझे कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना ही नहीं है, सब कामना खत्म हो गई है, मैं मूर्ख था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये होता है भक्त की भावना, मांगना नहीं आता, क्योंकि ऐसा भक्त जो कि ज्ञानी है, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद, अंते मतलब जन्म के बाद, वो समझ जाता है वासुदेव सर्वमिति, तभी तो महान है वो। मांगने के लिए नहीं जाता है, ये लालचपन मांगने की जो बातें हैं ये तो बिजनेस है। जैसे नरसिंह भगवान जब प्रहलाद महाराज को पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मांगो, तुमने बहुत कष्ट पाया है अपने पिता के द्वारा, बोलते मैं बिजनेसमैन हूं कि आप मेरे को दर्शन दिए हो, मैं आपसे कुछ मांगू उसके बदले में, नहीं मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, स्मरण करता रहूं मैं आपका, यही चाहता हूं। तो एक भजन है, बोलते हैं इसमें भजन बताया कि भक्त के, बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय सदैव गोविंद विश्राम, भजन में से भजन गाया जाता है, आपके हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं। क्योंकि भक्त के बारे में बताने, भक्त की महिमा कि भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, तो हम सबके हृदय में भी तो भगवान है, तो भक्त हमारे हृदय में विश्राम नहीं करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान बिजी रहते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, भगवान बिजी रहते हैं। लेकिन भक्ति कोई इच्छा नहीं, भक्त नहीं, भगवान आप आराम करो, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, इसलिए भक्त के हृदय में भगवान क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। भगवान क्या देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं भक्त के अंदर, कि वो मेरे प्रति समर्पित है कि नहीं, बस। वैष्णव के 26 गुण होते हैं, 26 गुण में पहला गुण जो है, बाकी 25 गुणों के पीछे पीछे आते हो। पहला गुण क्या है, शरणागति सरेंडर, समर्पण की भावना। जैसे ही समर्पित हो जाता है भगवान 25 गुण उसके अंदर अपने आप भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि उसने समर्पित कर दिया। मान लीजिए किसी व्यक्ति, महान बड़े व्यक्ति को, टाटा बिरला मानिए से महान व्यक्ति को आप समर्पित कर देते कि मैं ही आपका हूं सब कुछ, तो बोलेगा ठीक है फिर बाकी देखभाल तो मैं करूंगा तुम्हारा, कोई जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए टाटा ने किसी को अडॉप्ट कर लिया है, किसी को गोद ले लिया है, फिर उसको कुछ कमी है कि जाना पड़ेगा, नहीं, समर्पण करना ही सब कुछ है। तो भगवान उसका बैकग्राउंड भी नहीं देखते। जैसे विभीषण जब लंका में थे वहां से जब उनको पता चला रामचंद्र जी का खेमा यहाँ लगा हुआ है, तो जब वहां पहुंचे उनके पास, तो वानरों ने कहा मारो मारो, ये तो राक्षस जाति का व्यक्ति आ गया यहाँ पर, मारो मारो, ये भेदी लगता उसका कोई, यहाँ पर जासूस आया। सब बोलने लगे। रामचंद्र ने बोला नहीं रुक जाओ, ये विभीषण है, भक्त, मुझे पता है। तो आके जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि मैं जो मुझे समर्पित हो जाता है पूरी तरह, मैं उसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखता हूँ कि क्या था वो, पहले वो कितने भी मूर्ख हो, कितना भी गुंडा हो, बदमाश हो, लेकिन उसने मुझे समर्पण कर दिया ना, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान ये बोलते, गारंटी देते हैं। तो हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी का हाँ हाँ ये बात सही है, मैं इसके घर गया था, पूरे लंका में इनके घर पर ही राम 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 लिखा हुआ है। तो रामचंद्र जी पूछते तुम्हें भय नहीं लगता, तुमने राम राम लिखा है, रावण देख लेता तो? बोले एक बार हुआ था, रावण ने देख लिया था, रावण ने देखा, बोले क्या तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिखा राम राम राम? बोले नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझा है, ये लिखा है राम, राम मतलब, राम मतलब रावण, म से मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी जपता हूं। भक्तों का चतुर होना चाहिए, वहां बचे रहना है ना, अकेले थे, चारों तरफ चाचा राक्षस, पापा राक्षस, मामा राक्षस, सब राक्षस ही वहां पर, वो भक्ति कैसे होगी? बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा। तो जब वो वहां पर वापस आते हैं तो रामचंद्र उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते कि वो पहले कहाँ था, कैसा था, क्या करता था, कौन से जात का है, कौन से बिरादर का है, कौन से धर्म का, कौन सा फॉलो करता है, नहीं, क्या चीज वो मुझे समर्पित है कि नहीं, तब क्या करना है, बस भगवान को समर्पित करना है। भगवान अपने आप से कुछ आपको हटा देंगे, आपके जीवन से जितने भी कष्ट हटा देंगे, जितने भी कमियां हटा देंगे, लेकिन हम, हमारी समस्या है कि हम समर्पण नहीं करना चाहते। जैसे चंदन का वृक्ष, चंदन का वृक्ष पता है बड़ा दुर्लभ होता है, ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलता है, उस पर सांप लपेटे रहते हैं, उसमें फूल नहीं आता, उसमें फल नहीं आता है, कीचड़ और कांटों की जगह में उत्पन्न होता है, कांटे ही कांटे उसमें होते हैं, लेकिन एक गुण होता है उसके अंदर, क्या? खुशबू, पूरे जंगल में उसकी खुशबू आती है, इसलिए वो आकर्षित कर लेता है। यही गुण हमारे अंदर है कि हम भगवान पर समर्पित रहें, भगवान अपने आप आकर्षित हो जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे सुदामा जी के बारे में बताते, सुदामा जी का क्या भाव था, सुदामा जी 24 घंटा भगवान का स्मरण करते थे, कुछ नहीं था उनके पास देने के लिए, भगवान के पास, भगवान को देने के लिए एक दाना भी चावल नहीं मिलता था। एक बार 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया उन्होंने, सुदामा जी ने, उनके बच्चे 1 दिन तक नहीं खाए थे, 2 दिन तक बच्चों को तो कुछ खिलाया, पर 3 दिन से कुछ भी नहीं खाए थे, पति पत्नी दोनों। जब रात को एक बार नींद खुलती है उनकी, वो देखते हैं कि भूख लगती है प्रचंड, नींद नहीं आ रही है, वो जाते हैं एक घड़े में एक दाना चावल पड़ा रहता है, उसको निकालते खाने जाते हैं, तो उनके याद आता है कि मैंने तो भगवान को कुछ भोग लगाया नहीं, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, तो मैंने भगवान को भोग भी नहीं लगाया, तो मैं ऐसे ही खा ले रहा हूँ, मैं कैसा मूर्ख हूँ। तो भोग लगाने जाते हैं तो पत्नी उड़ जाती है, बोलती क्या कर रहे हो, मैंने भोग लगा रहा हूँ। बोलते मैं अर्धांगनी हूँ, मुझे नहीं तो क्या आधा। तो बोलते ठीक है, तोड़ लेता उसको, बोलते ये आधा तुम्हारा, बाकी भगवान को अर्पण करूँगा। तो भगवान को अर्पण करने जाते हैं तो पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं मैं भी अर्पण करूँगी। तो दोनों भगवान को अर्पण, बर्तन भी नहीं रहते घर में उनके अर्पण करने के लिए कुछ, भगवान को हाथ से अर्पण करते हैं। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण है वहाँ देख रहे हैं रुक्मिणी जी के साथ, रुक्मिणी जी व्याकुल हो जाती है, बोलते कुछ कीजिए इसके लिए, कुछ दो इसको, तो बेचारा सोची एक दाना जो बचा था वो भी नहीं खा रहा है, आपको अर्पण कर रहा है, आप कैसे हैं, आप कितने निष्ठुर हैं। बोलते मैं निष्ठुर नहीं हूँ, ये निष्ठुर है, मेरे पास आता क्यों नहीं है, मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ उसे, ये मेरे पास आता ही नहीं है। बोलते हैं कि आप कुछ बुद्धि दो। बोले नहीं, ये मेरा भक्त है, जिस दिन मेरे पास आएगा सब कुछ दे दूंगा इसे। लेकिन वो बोलते हैं मैं क्यों जाऊं मांगने के लिए भगवान के पास, भगवान ने मुझे शरीर दिया है, जीवन दिया है, आंखें दी हैं, स्वस्थ शरीर दिया है, मैं भगवान के पास मांगने क्यों जाऊं, क्या मैं बिजनेसमैन हूं? वो मांगने के लिए जाते थे। तो रुक्मिणी जी बोलती कम से कम इसकी पत्नी को बुद्धि दे दो, ये कुछ कर जाए। बोलते ठीक है ये कर सकता हूं, पत्नी उतनी भक्त नहीं थी, उसको बुद्धि दे दी है, क्या इतना परेशान करो, मतलब इतने प्रेशराइज करो, फोर्स करो कि वो मेरे पास आए मांगने के लिए, ऐसे बुद्धि दे देते हैं। तो पत्नी बोलती है कि ठीक है तुम अपने लिए नहीं मांगो, कम से कम मेरे लिए मांगो, बच्चों के लिए मांगो, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, हमेशा भगवान का नाम लेना, ये सब तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार को क्यों पालन पोषण किया, परिवार क्यों बड़ाई इतनी, ऐसा करके वो ताना देती है। पुत्र अच्छा अच्छा मैं जाता हूँ आज, वो सोचते जाने के लिए, तो रुक्मिणी जी खुश हो जाती हैं, बोलते हैं अच्छा प्लान है, तो मांगने आ गए। लेकिन जब घर से निकलते हैं, बोलते सुनो सुनो, सिर्फ वो राजा नहीं, सिर्फ भगवान नहीं, तुम्हारे मित्र भी हैं, तो साथ में कुछ लेकर जाओ। तो बोलते हमारे घर में क्या है, एक दाना तो अभी कम खाल भोग लगा दिया था भगवान को। बोले ठीक है, मैं पड़ोस से कुछ मांगती हूँ। पड़ोस में जाती है, जो चिवड़ा होता है वो मांगती है। बोलती है कुछ उधार दे दो, मेरे पति जब लौट के आएंगे ना तो बहुत सारा धन लाएंगे, मैं इसका 4 गुना दूंगी तुम्हें, ऐसे बोलकर मांगती है। तो वो भी पड़ोस ने बोले कितने बार तो मांगा, ये दिया तो कभी नहीं है, चलो ले जाओ कोई बात नहीं, दे देती हैं। तो पोटली में बांधते हैं और सुदामा जी यहाँ रख के चले चलते हैं, और 12-13 दिन की पूरी यात्रा करके पहुँचते हैं। कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं कि मेरा मित्र आया इतने सालों बाद, और रुक्मिणी जी की युक्ति काम कर गई है, पत्नी की डांट से वो आ गए हैं लेने के लिए, तो चलो चलो उसको पकड़ते हैं। दौड़ते हुए जाते हैं, भोजन करने बैठे रहते हैं, उनको द्वारपाल संदेश देते हैं कि आपका मित्र आया है। दौड़ के जाते हैं, उनको लेकर आते हैं और उस स्थान पर बैठा देते हैं जहाँ राजमहल का स्थान है, इतना बड़ा टेबल और 56 भोग भगवान ग्रहण कर रहे थे, शुरू भी नहीं किया था, बस बैठे ही थे। उस स्थान पर बैठाते हैं, पहले चरण धोते हैं उनका, बोलते तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए हैं चल चल के, तुम्हारे पास तो चप्पल भी नहीं है। उनके चरण धोते हैं, वो चरण को छिड़कते सर पर पीते हैं, और रुक्मिणी जी के सिर चढ़ पर छिड़कते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान रुक्मिणी जी, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य देवी, एक उसकी बताते हैं रुक्मिणी जी का जो विस्तार है, असंख्य लक्ष्मियां हैं, उसमें से एक लक्ष्मी एक पृथ्वी पर आती है तो पूरे दिवाली में लोग उसी की पूजा करते हैं। ऐसे अनंत कोटि, कोई सीमा नहीं, ऐसी लक्ष्मियां उनके शरीर में निवास करती हैं। वो रुक्मिणी जी पंखा कर रही है उनको, किनको? सुदामा जी को, जिनके पास कुछ नहीं है, एक चावल का दाना भी नहीं है, वो उसको पंखा कर रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पूरी तरह पर आश्रित है, कृष्ण उनकी सेवा कर रहे हैं, खाओ खाओ जितना है सब आपके लिए व्यंजन है। वो अद्भुत, उनको लगे मेरा मित्र कैसा है, ये भगवान कैसे हैं कि मैं ऐसे मांगने आया हूँ, भिखारी हूँ मैं तो, कुछ भी नहीं, मैं कैसा गरीब ब्राह्मण हूँ, और मुझे क्या क्या दे रहा है, खिलाया है, मेरे चरण धो रहा है। उसके बाद बोलते हैं तुम थक गए होगे, कितने दूर आप सफ़र करके आए हो, आओ विश्राम करो। विश्राम कराते हैं, जब 8 घंटा वो विश्राम कर लेते हैं तो उनके जाकर चरण धोवाते हैं, है ना। उठाने की यही विधि है, ऐसा नहीं पूरा हिला दिया, उठो 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 सो रहे हो, उठाने का तरीका क्या है, चरण दबाया जाता है किसी व्यक्ति का, उसको उठाया जाता है। तो चरण दबा के उन्होंने जब उठाया, उनकी थकान पूरी हो गई थी, तो बोले कि अब आपका प्रयोजन क्या है बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, जबकि सेवा अभी तक चल रही थी, फिर भी पूछते मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि मेरी कोई सेवा नहीं, बहुत सेवा कर लिया आपने। बोलते नहीं कुछ तो बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है, भगवान सब जानते हैं फिर भी भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं कि उनकी क्या इच्छा है। बोले तुम्हारी कोई इच्छा तो हो बताओ। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, सचमुच कोई इच्छा नहीं, मुझे सचमुच कोई इच्छा नहीं है। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे लिए क्या लेकर आए हो। बोले नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके नहीं आया हूँ। बोले इतना सारा व्यंजन जो एक मेहमान को खिलाया, ये क्या खाते होंगे, इतना बड़ा बड़ा चीज खाते होंगे, मैं ये जो रखा हूँ है ना, यहाँ पर चिवड़ा रखा था, पोहा बन चुका होगा पसीने के कारण, फूल गया होगा, ये मैं द्वारकाधीश कृष्ण को दूंगा, मेरे तो बुद्धि मारी जाएगा ऐसा करूंगा। तो ये सोचकर वो क्या करते, देते नहीं है, देख लेते हैं कृष्ण, बोलते ये क्या छुपा रखा है, छीन लेते हैं उसको, और छीन के क्या करते हैं, उसको खाने लगते हैं। बोलते तुमने बचपन मेरा चिवड़ा खाया था, लेकिन अभी मैंने छीन के खाना है, इसलिए मैं छीन के खा रहा हूँ। छीन के खा ले तो खूब रोते हैं। सुदामा जी रोने लगते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मेरे चरण धोए, मैं सब कुछ किया, मैं कैसा मित्र हूँ, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया। रोने लगते हैं तो बोले रो क्यों रहे हो। बोलते नहीं मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना, मैं जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं कुछ चाहते हो ले सको, ले जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, एक मित्र का तो सब कुछ दूसरे मित्र का ही होता है। बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जाने लगते हैं, और रोते रोते जाते रहते हैं। अब उनका मन दोहरा हो चुका है, वापस जाऊं सीधे जाऊं, वापस जाऊं सीधे जाऊं, वापस जाऊं सीधे जाऊं। क्यों सीधे जाऊं, इसलिए कि मैं किस मुंह से मांगूं, ये तो अच्छा नहीं मांगना से मित्र से। और वापस जाने लगते, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सब राहत देख रहे होंगे, कितने वादे लोगों से गांव वालों से कर दिया होगा, कैसे होगा, बड़ी चिंतित हो क्या वो, फिर भी चलते 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 जाते हैं। तो रुक्मिणी जी बोलती है कि आपने इनको कुछ दिया क्यों नहीं, ये मांगने तो आए थे, पर बोलते उसने मांगा कहां, बोलते फिर भी दे देते, वो आया तो था, उपहार समझ के दे देते। बोलते मैं इसे क्या दूं, मेरे पास संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। बोलते ये संसार तो आपका है ना, बोलते हाँ मैं तो फिर भी उसके ऋणी रह जाऊंगा, पूरा संसार भी दे दूं तो क्यों, क्योंकि उसके पास जो नहीं था उसको दूसरे के यहां से उधारी मांग कर लेकर आया था चिवड़ा, मैं किसके घर उधारी मांगने जाऊं, क्योंकि संसार में प्रत्येक वस्तु किसकी है, भगवान के, तो भगवान किसके मांगने जाएंगे, जिसके घर से मांगने वही भगवान का ही है। बोलते मैं तो उनको पूरा संसार भी दे दूं फिर भी ऋणी रहूंगा, इसलिए भगवान क्या करते हैं, बोलते ठीक है उपहार स्वरूप मैं कुछ सेवा जरूर कर सकता हूं, तो घर का परिवर्तन कर देते हैं, महल बना देते हैं, पत्नी सुंदर हो जाती है, बच्चे सुंदर हो जाते हैं, गहने कपड़े सब अच्छे हो जाते हैं। ये बेचारे चिंतित होकर पहुंच रहे हैं क्या होगा मेरा, वहां जाकर क्या लोग पूछेंगे तो क्या होगा, वहां जाते हैं तो वो घर के पास देखते हैं ये महल किसका पता, गलत एड्रेस में आएंगे लगता है, आगे जाने लगते हैं, उसकी पत्नी बोलते सुनो सुनो, बोलते कौन है स्त्री मुझे दौड़ा रही है, भागने लगते हैं, पता नहीं कौन स्त्री मुझे दौड़ा रही है, क्योंकि इतनी सुंदर हो गई, इतने सारे गहने पहने, वो विश्वास ही नहीं होता उसको। फिर बोलती है आवाज पहचानते हैं, रूप परिवर्तन हो जाता है पर आवाज परिवर्तन नहीं, तो पहचान जाते हैं। तो फिर वापस आते, बोलते हैं कि सब कैसे हुआ, भले कमाल की बात है आप मांग कर आए हो, सब कुछ कृष्ण दिए के आए हो, स्वयं आए थे भगवान तो आप यहाँ से वहाँ आपके द्वारकाधीश सब दे के गए। तो इस प्रकार भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा लगे रहते हैं, और अकिंचन जो भक्त होता है कुछ मांगता नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है, जब भगवान के पास खड़े होते हैं सारा इच्छाएं वहीं पर पूरी कर लेते हैं, भगवान ये मेरा लिस्ट है। जैसे मैं बहुत पहले एक मंदिर में गया था, बजरंगबली जी के मंदिर में, वहां देखा था पूरी दीवार पर ना रोल नंबर लिखा हुआ है स्कूल के बच्चों का, उन्हें चला भगवान ये मेरा रोल नंबर है पास कर देना, जैसे हनुमान जी कॉपी चेक करने आएंगे उसका, नहीं मांगना नहीं है, मांगना चाहिए तो यही मांगना चाहिए, अगर सचमुच भौतिक दृष्टि से मांगते भी तो ये मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, कृपा दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए कि आपको समझ सके, हे सरस्वती जी आप मुझे बुद्धि ऐसी दीजिए कि मैं भगवान को समझ सकूं, ये मांगना चाहिए, ये भौतिक चीजें नहीं मानना चाहिए। तो इस प्रकार बताया कि भक्त और भगवान के बीच में क्या कंपटीशन लगा रहता है, किस प्रकार एक दूसरे की सेवा कर सके। कितने बजे तक होता प्रवचन, टाइम क्या है, तो आपको पता है कि मछली जो होती है वो जब अंडे देती है, मछली जब अंडे देती है तो उसको सेकती कैसी है, उसको बच्चों से बच्चे बाहर कैसे आते हैं, वो आंखों से सेकती है, आपको पता है मछली आंखों से देखकर अंडे को देखती रहती है कॉन्टिन्यूस लगातार, उसके बाद उसके बच्चे निकलते हैं उसमें से, है ना। और जो कछुआ होता है, जो मादा कछुआ है, वो क्या करती है कि अंडे देती है भूमि पर और पानी में आ जाती है, पानी से वो अपने मेडिटेशन ध्यान लगाती है और अंडे को सेंकती है। सोच के देखिए ऐसा काम तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, है ना, खैर मनुष्य तो अंडे देते ही नहीं है, अंडे देगा भी तो नहीं कर सकता। तो और बताते जैसे चिड़िया है, चिड़िया अंडे को कैसे सेंकती है, उस पर बैठ कर अपने स्पर्श से, है ना, त्वचा से। तो बताया गया कि वैसे अंडे के अंदर जैसे जीवात्मा है और उसको जब सेंका जाता है आंखों से, स्पर्श से या ध्यान लगाने से, जिस प्रकार चूजा बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान हृदय में हमारे हैं, निवास करते हैं, भगवान सामने में भी हैं, पर हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों हमें, हम उसका भाव नहीं है। जब भगवान का दर्शन लगातार करते रहेंगे, रोज दर्शन करेंगे आंखों से, तो आपको दिखने लग जाएंगे भगवान। जब आप ध्यान लगाएंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे भगवान को देखने के लिए, या भगवान की सेवा करेंगे अपने हाथों से, है ना, स्पर्श से, तो भगवान दिखने लगेंगे। हम लोग सोचते हैं भगवान को दिखाओ, एक व्यक्ति बोला कि भगवान वगवान कुछ नहीं होता, भगवान है तो यहां आए और मेरे सामने प्रकट हो, तब मैं समझ जाऊंगा कि भगवान है। तब भगवान क्या, भगवान उसके नौकर हैं, उसके आदेश मानेंगे, है ना, भगवान ने क्या उससे उधारी ले रखा है कि भगवान उनके पास आएंगे। आपकी योग्यता क्या है जो आप भगवान को देखना चाहते हो, कई बार मैंने बताया भी है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को देखना चाहते हैं तो बोले यहां पर आके दिखाएं मोदी को, तब मैं मानूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है, नहीं तो नहीं है। तो मोदी जी क्या बोलेंगे, क्यों आऊं, तुम कौन हो, है ना, तुम्हारी योग्यता क्या है, यहां तक कि उसके घर भी देखने जाओगे तो शायद मिलने के लिए आदेश नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा। तो पहले योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है, भक्ति। जब भक्ति करेंगे, जब भक्ति हमारा परिपक्व हो जाएगा तो सब कुछ दिखने लगता है। भगवान बोलते हैं अपने आप में प्रकट करता हूं। बताइए सूरज को देखने के लिए क्या चाहिए, बताइए, आंख। ठीक है, रात को 12 बजे आपको आंख खोल लो, देख लो सूरज को, दिख जाएगा। क्या चाहिए सूरज को देखने के लिए, क्या चाहिए, सूरज चाहिए। लेकिन सूरज तो जरूरी है ना, सूरज नहीं देखे किसके देखोगे। जैसे एक व्यक्ति था, मकान मालिक थे, वो थोड़ा बहुत मूर्ख थे, तो उन्होंने क्या किया, रात को लालटेन लेकर निकल गए, छत पर जाने लगे। तो किराए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, सूरज को देखने जा रहा हूँ। बोले इतनी रात को, बोलते हाँ, आप भी ना अजीब मालिक हो, एक लालटेन दिखेगा क्या, मेरा भी लालटेन लेते जाओ, दूसरा लालटेन दे देते हैं। आगे जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, जब दूसरे मंजिल पहुँचते हैं, बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, दो लालटेन लेके, सूरज को देखने के लिए। तो बोलते हैं दो लालटेन से कभी दिखता है, आप लोग भी ऐसी हो, पांच लालटेन लगते हैं कम से कम, वो पांच दे देते हैं क्या व्यक्ति। ऐसे करते करते लालटेन 50 लालटेन लेकर जला रहते हैं, रात को 12 बजे सब देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे बीतते रहता समय, बीतते रहता, आप दिखेंगे तब दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, सुबह हो जाती है, सूरज दिखने लगता है, देखा दिख गया 50 लालटेन से। पर कैसे दिखे, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। वैसे ही जब तक भगवान अपने आप को आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे तो भगवान को देख नहीं सकते। भगवान क्यों प्रकट करेंगे आप अपने सामने, आपके सामने, आप योग्य हैं तो। क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं थे, लेकिन देख नहीं पाए। पकड़ लो ग्वाले को, कैदी बना लो, बोलते हैं इसके, इसको शांति दूत बंद कराया, भगवान को पकड़ने चले थे, भगवान अपना विराट रूप दिखाया, घबरा गया। उस विराट रूप का दर्शन सब नहीं कर पाए, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि भक्तों ने किया बस। तो इसी प्रकार बताया गया है कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, ऐसा कुछ कार्य कीजिए कि भगवान आपको देखने के लिए आए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद जी गुरु हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कार्य कीजिए कि भगवान आपको देखने के लिए आए, आप देखने प्रयास मत कीजिए। तो भक्ति करने से भगवान आपको देखने आएंगे, है ना। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस प्रकार भगवान की सेवा की जाए। जैसे एक रसखान कवि, आपने सुना होगा नाम, बहुत अच्छा कविता लिखते थे भगवान कृष्ण के लिए। वो एक बार पान खाने के लिए पान की दुकान पर आए, और पान वाले जब पान बनाकर उनको खिलाया, पान खाया और फोटो देखने लगे, कैलेंडर लगा था, जैसे भक्तों का भगवान का कैलेंडर होता ना, देखा, बोले ये लड़का कौन है, कभी देखा नहीं भगवान का चित्र, कभी जान जान मुसलमान थे वो, उन्होंने बोले ये लड़का कौन है, तो बोले ये कृष्ण है। बोले बहुत सुंदर है, इसने जूते क्यों नहीं पहने, बोले इसके कोई देता ही नहीं जूता। वो पान वाला ऐसी जवाब दिया जा रहा था, बोले इसको समझ तो आएगा नहीं, तो कुछ उटांग जवाब दे दो, बोले कि अब कोई जूता देता ही नहीं है, उसको क्या करेगा बेचारा, ऐसे बोल दिया। लेकिन सुंदर तो बहुत लड़का, सुंदर बहुत है, तो बोला कि ठीक है जूता मैं खरीद लो, तो पहन लेगा, बोला हाँ हाँ पहन लेगा, जाओ जाओ। वो चले गए, उनके हृदय में भगवान घुस गए, क्योंकि सरल हृदय था उनका, है ना, तो उनकी सेवा की भावना थी। वो जूता खरीद लाए, पान वाले के बोलते हैं जूता ले आए, कहाँ मिलेगा ये, बोले यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो फोटो उसकी वृंदावन मिलेगा, जाओ। बोलते हैं वृंदावन कहाँ है, बोले वृंदावन वहाँ है, बता दिए। तो वृंदावन चले गए, और वृंदावन हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं ये कृष्णा कहाँ रहता है, कृष्णा कहाँ मिलेगा, मैं उसके लिए जूते लाया हूँ। सब बोले पागल हो गया ये लड़का, ये आदमी पागल हो गया है, कृष्ण को बताओ सर जूता देने आया, कोई कृष्ण से जूता ले लेंगे। तो फिर बोलते हैं, क्यों बोलता है कि मंदिर मिलेगा, मंदिर में, मंदिर चले जाओ। तो मंदिर में घुसना चाहते थे, मंदिर में घुसने नहीं देते, उनका रूप रंग देखे कि मुसलमान है, बोलते बाहर बैठे रहो, घुसने नहीं देते हैं। तो वो बहुत रोने लगे कि नहीं मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है। तब उसको शांत कैसे किया जाए, एक पुजारी बोलते बाहर बैठो, रात को बाहर आते हैं। अच्छा ठीक है, हम बाहर बैठे रहेंगे, बाहर जूता लेके बैठे हैं कि कृष्ण कब आएंगे, मैं उनको जूता पहनाऊंगा। ऐसा करते करते चार दिन बीत जाता, रोने लगते हैं, रोज रोते, कृष्ण कब आओगे, मैं तुमको जूता पहनाऊंगा। क्या मेरा जूता अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छे जूते लाए हैं, देखो तुम्हारे साइज के हैं। ऐसा करके बहुत प्रार्थना करते हैं तो एक रात को भगवान आ ही जाते हैं, और आए तो क्या बोलते हैं कि मैं हूँ कृष्णा, सामने खड़े रहते हैं, मेरे जूते लाओ, मैं पहने आ गया हूँ। तो जूते निकालते हैं और पहनाते, एकदम परफेक्ट फिट होता है जूता उनको। तो बोलते हैं आप ऐसे मत घूमना बिना जूते के, और जूते चाहिए तो मुझे मांग लेना। तो भगवान से बातें करें, क्योंकि सरल हृदय है और उनकी योग्यता है, भगवान को देखने की इच्छा है प्रबल और सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और हम भगवान के पास जाते हैं, क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। पहली बार देखने के बाद वो जूता पहनाना चाहते हैं, हम लोग भगवान के पास जाते हैं, बोलेंगे सब कुछ हमें दे दो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है भगवान, हमें दे दो। एक माता जी मंदिर आई थी तो बोलती, आप लोग ना भगवान की सेवा करते हो ना, ये कृष्ण की बहुत अच्छा है, सही कृष्ण की पूजा करना चाहिए। हमने बोला यार बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी स्त्री है, माता जी है ना, ये कमोगले पर स्टोरी सुनाई थी वाली। तो हम लोग बहुत खुश हुए, तो हमने पूछा कि आप उनको मतलब कैसे मानते हैं उनको। बोलते नहीं, इसने तो बहुत दुख झेला है, बेचारा पैदा हुआ जेल में, बेचारा बोल, और पैदा होते साथ ही माँ बाप को छोड़ना पड़ा, बताओ कैसा जीवन है, कितना दुख है। पैदा किया किसी ने, पाला किसी ने, जिसने पाला उसके साथ रहना पाए, दुखी दुख है। जिससे प्रेम हुआ राधा रानी से, विवाह रुक्मिणी जी से हो गया, कितना दुख झेला इसने। ग्वाल बालों के साथ माँ कुछ भेजती थी, उनके मित्र छीन के खा जाते थे, खाने के लिए ठीक से मिलता नहीं था, माखन चोरी करके खाया बेचारे ने, तब उसका पूरा जीवन बीता है, बहुत दुख झेला इसने। तो इसने इतना दुख झेला है तो बड़ी बात है, इसका मित्र इसको ड्राइवर बना दिया। अर्जुन ने अर्जुन के सारथी बने थे ना, कैसे ऐसे मित्र होते हैं बताओ, कितना दुख झेला है। ऐसे व्यक्ति की पूजा करना चाहिए कि तेरे आगे हमारा कुछ दुख है ही नहीं, हमारा दुख तो कुछ है ही नहीं, कैसे करने से हमारा दुख कम लगेगा, इसलिए सही व्यक्ति की पूजा कर रहे हो। तो बाहर से तो लोग लगता है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर उसके पीछे चेतना क्या है, उसके पीछे ज्ञान क्या है, उसके पीछे बुद्धि क्या है, ये ज्यादा समझना जरूरी है। तो इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि वो जान जाता है वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ भगवान ही है और कुछ नहीं है। ये भावना से पूर्ण ज्ञान से जब सेवा करता है, भगवान बोलते हैं वो मेरा प्रिय है और मैं उसका प्रिय हूं, ये संदेश इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि हमें भगवान को भगवद गीता भागवतम ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से समझना है कि भगवान क्या है। जब हम समझ जाते हैं, भक्तों के माध्यम से सुन के समझ जाते हैं, तब हमारा समर्पण बढ़ जाता है, और समर्पण जब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, भगवान के प्रिय बन जाते हैं, अन्यथा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले भक्तों से श्रवण करना पड़ेगा। जैसे आप लोग इस कार्यक्रम में आते हैं तो भगवान के बारे में सुनकर श्रद्धा बढ़ती है ना। जैसे पहले हम मंदिर जाते थे तो ऐसे भगवान को प्रणाम करते थे। एक हमारे कॉलेज में एक लड़का था, कॉलेज के समय की बात है, वो बजरंग बली जी की पूजा करता था, है ना। तो बजरंग तो उनको जो पूजा करते थे तो पूजा भी उनकी अजीब सी थी, जूते वूते पहने रहेंगे, बजरंग बली जी का मंदिर रहेगा, बाहर से खड़े रहेंगे और वो जो बूंदी होता है ना, बूंदी चढ़ाते हैं उनको, बाहर से दिखाएंगे और क्या बोलेंगे, बज्जू भैया को नमस्कार, हो गया खा लिया, वो खाना शुरू, खाते खाते बाहर निकल लाएंगे। तो ये कोई भावना नहीं है, है ना, क्योंकि उसे बुद्धि ही नहीं है, नमस्कार कैसे करना है, भूख कैसे लगाना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, है ना। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई शिशु है, उसको भोजन सेवा करनी है, उसके नाक खोला, उसके नाक में खिला दिया सब कुछ, नाक में बोतल लगा दिया, पिला दिया उसको, बचेगा वो, बच्चा मर जाएगा, रोएगा। तो किसकी कैसी सेवा करनी है इसकी जानकारी होना जरूरी है। अब भक्त यहां पर आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं पूरा। दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या, समर्पण की भावना कि भगवान मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। पहले आप प्रणाम करते थे ऐसे, कोई ऐसे करता था, कोई ऐसे करता था, है ना, कोई ऐसे करते कई लोग, लेकिन बताया गया कि समर्पण दंडवत प्रणाम करना पूरा, कि भगवान मेरे पास सब कुछ तो आप ही क्या है, ये शरीर भी आपका है, इसलिए शरीर भी आपका समर्पण है। तो ये जब ज्ञान आया तब ऐसे करेंगे। यानी वैसे ही अगर जब हम भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो समर्पण की भावना अपने आप बढ़ जाएगी। और कैसे सेवा करना है समझ में आ जाएगा। जैसे पत्नी अपने पति की सेवा करना चाहती है, उसके लिए उसको कुकिंग सीखना पड़ता है, कपड़े धोना सीखना पड़ता है ना, उसको सीखना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वैसे ही भगवान की सेवा करने के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके कर सकते हैं। इस श्लोक का यही सार है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? बताया जाता है कि दो प्रकार के लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं, एक जिनको सब कुछ पता है, सब कुछ समझ में आ गया, एक दूसरा जिसको कुछ भी समझ नहीं आया और उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं प्रश्न पूछूं? हाँ, तैयार है आप लोग? मैं उनसे किसी से ही पूछ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि हाथ खड़ा करना। अच्छा बताइए, हाथ खड़ा कीजिएगा, चलिए बताइएगा। ठीक है, बोलना नहीं, बोलना नहीं है आपको, हाथ खड़ा करना अगर उत्तर आता है तो। चार प्रकार के लोग कौन हैं जो भगवान के पास आते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। एक, दो, तीन, चार। ये सब भक्त लोग ही हाथ उठा रहे हैं। जो लोग आज सुने हैं पहली बार, हाथ आपका पता है? बताइए।
जो दुखी आदमी होता है,
आर्थ दुखी, हाँ।
दूसरा जिसको भगवान को देखने की जिज्ञासा होती है,
जिज्ञासा होती है, दो हो गए।
एक जिसको सब कुछ पूर्ण ज्ञान है, उसे पता है कि भगवान क्या है,
तीन हो गए।
वो ही भगवान की शरण में जाएगा। और तीसरा,
चौथा,
जिसको किसी चीज की जरूरत होगी,
चीज की
मतलब धन चाहिए,
धन चाहिए,
गाड़ी चाहिए, कुछ।
वेरी गुड, तुम तालियां बजाइए। वेरी गुड। तो चार लोग जो दुखी होते हैं, जो धन के लिए आते हैं, और जो जिज्ञासु हैं संसार में सब क्या हो रहा है जानने के लिए जाते हैं, और अंतिम में जो ज्ञानी होता है। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? ज्ञानी होता है सर्वश्रेष्ठ। तो वो ज्ञानी भगवान को क्यों प्रिय है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। भगवान को प्रिय क्यों है? एक ही है, और हाथ खड़ा कीजिए। भगवान को वो ज्ञानी क्यों प्रिय है? कौन नए लोग बताइए, प्रयास कीजिए। आप बताओगे? सिर खुजला रहे, बताइए। क्योंकि भगवान को वो जानकर भगवान को समर्पित हो रहा है, किसी लोभ से नहीं, किसी मंतव्य से नहीं, किसी उद्देश्य नहीं, सेवा की भावना से, इसलिए वो भगवान को प्रिय। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आप उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आप सब लोग से हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ पर आए, नोटबुक और पेन लेकर आए, नोट करें। कलयुग में बुद्धि कैसी होती है? सुमंद मंद बुद्धि हो मंद भाग्यो, भागवत में बताया गया है। हमारी बुद्धि कैसी होती है? मंद नहीं, सुमंद, वेरी स्लो। ठीक है, आज से तीन दिन पहले इतना बजे क्या कर रहे थे पूछा जाएगा तो आप सोचने लग जाओगे। अगले सप्ताह में कुछ बताया जाएगा तो इस सप्ताह का भूल जाओगे, तो ऐसा मत कीजिए, है ना। भगवान ने आपको इतनी बुद्धि तो दी है कि कॉपी पेन लेकर आ सकते हैं, और थोड़ी सी और बुद्धि होगी तो लिख भी ले लीजिए, थोड़ी और बुद्धि होगी तो उसको फिर घर जाके पढ़ लीजिएगा। उसको बोलते हैं मननम, घर जाके पढ़ते हैं तो मननम कहाँ गए, या किसी को बताते हैं तो। तो यहाँ जो सुनते हैं, जो आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ध्यान से सुनिए और उसको जाकर एक व्यक्ति को बताइए, किसी एक व्यक्ति को। ठीक है, कितने लोग हैं जो घर जाकर आज के संदेश को बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कई लोग सोच रहे हैं क्यों बताएं, बताना ही तो है कि खर्चा हुआ कुछ, इससे इधर उधर की बातें बताती हैं, इसकी सास ने वो बोला, उसकी बहू ने वो बोला, ये तो बताते रहते हो, कम से कम भगवान के बारे में बता दो जाके घर पर। नहीं बताएंगे पक्का, याद रखिए, आप भगवान के बारे में बताएंगे 10 मिनट तो 100% ये गारंटी कि 10 मिनट आप किसी गलत बात नहीं करेंगे, तो पक्का है ना, अपने आप पक्का हो गया। तो कृपया जो भी यहाँ सुनिए उसको बताइए, और याद रखने का तरीका क्या है, नोट करके। नोट कीजिए, नोटबुक ले आइए, कॉपी ले आइए, पेन ले आइए, जो स्कूल में करते थे आदत डालिए। ऐसे मत सोचिए हम तो वृद्ध हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अभी सब क्या लिखना लिखना पढ़ना बता रहे हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मरता हुआ व्यक्ति भी सीखना चाहे तो सीख सकता है, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, पक्का ले आएंगे? आप लोग से विनती है हाथ जोड़ के, प्लीज अगली बार आप एक कॉपी एक पेन लेकर आइए, नोट बनाइए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, जय गौर प्रेमानंदे। तो कुछ सूचना है, ध्यान से सुनिए। तो आने वाले दिनों में, कुछ अलग अलग दिनों में, अगले शनिवार तक स्पेशल प्रोग्राम्स हैं। कल आज का, आज रविवार के दिन जो है जयदेव गोस्वामी का तिरुभा दिवस है। जयदेव गोस्वामी का भजन हम गाते हैं, आप देखिए नरसिंह प्रणाम लिखा है वहां पर, उसके नीचे लिखा है नरसिंह प्रार्थना, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। ये जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ है, उनका आज तिरुभाव दिवस, यानी आज के दिन वो शरीर त्याग कर भगवत धाम चले गए थे। और सोमवार को लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, और गुरुवार को गंगा सागर मेला लगता है। आपको पता है गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, गंगा और सागर का मिलन जहाँ होता है वहाँ पश्चिम बंगाल में। शुक्रवार को एकादशी है, जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो व्रत रखें एकादशी का शुक्रवार को, जो नहीं रखते हैं वो रखना शुरू कर दें, बहुत पुण्य चीज़ है एकादशी का व्रत रखना। और शनिवार को उसका व्रत तोड़ने का समय होता है 10:18 से 10:45 सुबह, इसके बीच में तोड़ना है, ना पहले ना बाद। पहले तोड़ेंगे तभी व्रत का फल नहीं मिलेगा, बाद में तोड़ेंगे तो व्रत माना ही नहीं जाएगा। तो 10:18 से 10:45 ये जो समय है बड़ा छोटा है, पर ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं या रखेंगे, शुक्रवार को व्रत है और शनिवार को व्रत तोड़ना है। ठीक है, और जो आज का प्रसादम है वो स्पॉन्सर्ड किया गया है, प्रायोजित किया गया है जीवन मल, मेरे को नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, क्या है, जीवन मल प्रभु जी ने किया है। ठीक है, तो सब लोग एक बार उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्री राधा पार्थ सारथी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि वो उनको कृपा प्रदान करें, उनको भक्ति प्रदान करें और जल्दी से भक्त बने। तो उनके लिए कुछ उपहार है इस सेंटर की तरफ से, अगर वो यहाँ हैं या उनके परिवार के सदस्य तो यहाँ पर कृपया आए। एक बार फिर से उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तभी हम लोग नरसिंह आरती करेंगे, तो सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा।